मेरी कुछ तुम्हारी केस आठवें एपिसोड में हमारे साथ हैं पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी जो कि पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पर इन्होंने मिरर इमेज में किताबें लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इनकी कहानी बड़ी ही रोचक व दिलचस्प है, जिसमें इन्होंने कुछ अलग करने की सोच के साथ ऐसा कुछ किया जो सुनने में तो बच्चों के खेल सा मालूम पड़ेगा, पर वैसा कुछ करना किसी जुनूनी व्यक्तित्व से ही संभव है। इन्होंने सन 2003 से 2015 तक 16 मिरर इमेज में किताबें लिखी हैं, जिनमें भगवत गीता, मधुशाला, गीतांजलि, साई चरित जैसी किताबें हैं जो सुई से, मेहंदीकोन से, कील से लिखी गई हैं। पीयूष जी एक प्रकाशित लेखक भी हैं। इन्होंने अब तक 4 किताबें प्रकाशित की हैं। आइए आज के इस मंच पे पीयूष जी की कहानी से कुछ सीखते हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के इस मंच पर।
धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, ये मेरे सौभाग्य की बात है।
पीयूष जी, आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं के बारे में 2 शब्द कहें ताकि सुनने वाले आपसे और अच्छी तरह से परिचित हो सकें।
धन्यवाद। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार में पला बड़ा एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, जो हमेशा कुछ नया सोचने पर विश्वास रखता है। हमेशा कुछ नया करने की लगन होने के नाते 16 पुस्तकें दर्पण छवि में लिख चुका है। 10 फरवरी सन 1967 को माता रविकांता, पिता डॉक्टर देवेंद्र गोयल के घर में पैदा हुआ।
पीयूष जी, आपने ये मिरर इमेज शैली के बारे में किसी से सुना था या किसी को ऐसे लिखते देखा था? कृपया हम सबको बताएं कि आपने ऐसा करने का कब और क्यों सोचा?
ये आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अब आप पहली महिला हैं जो ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रही हैं, तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। ना ही मैंने किसी से सुना था और ना ही मैंने किसी को लिखते हुए देखा था। 1987 में आप समझते ही हैं कि जब ना तो इतना इंटरनेट था, ना गूगल का इतना वो था, तो ये अपने आप ही एक मन में विचार आया है कुछ नया करने का, और मैंने उल्टा लिखना शुरू किया। सन 87 में मैंने लिखना शुरू किया और सफल होता गया। सोचा इसलिए कुछ नया हो जाएगा, और नए नए प्रयोग करता गया और सफलता मिलती गई और नई चीजें अस्तित्व में आ गई।
बहुत ही सुंदर, तो ये आपने तो कमाल ही कर दिया कि नया लिखने के चक्कर में आपने एक नई लिपि ही विकसित कर दी। तो आपने हिंदी में, अंग्रेजी में, और आपने किसी और अन्य भाषा में भी लिखा है या बस हिंदी और अंग्रेजी में?
इंग्लिश में लिखा है, और एक्चुअली में मैंने बताया ना आपको कि एक्चुअली में क्या है, भगवान को बहुत पूजा पाठ वाले आदमी है, तो सारी किताबें मैंने धार्मिक लिखने की कोशिश करी है, 2-3 किताब छोड़ करके।
जी जी।
तो मैंने संस्कृत में भी दुर्गा कवच को लिखा है।
अच्छा जी जी। और ये तो बड़ी सुंदर सी बात बताई है, और इससे बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि जैसे बच्चे कभी खेल रहे होते हैं, उल्टा लिखने का उनका शौक होता है। अभी मैं जैसे मनोविज्ञान की विद्यार्थी हूँ, तो उसमें कहते हैं कि आप अगर किसी अनेक तरीके से लिखने की कोशिश करते हो जो आपका अपना तरीका है, तो आपका IQ लेवल भी बढ़ता है। तो ये तो अगर बच्चों को बताया जाए कि आप इस तरह से लिखो या ऐसे लिखो, और उसमें सोच के उस तरीके से लिखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस दौर में आप आज जहाँ तक पहुँचे हो या आप जो भी कर रहे हो, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए आपने ये लिखने पढ़ने का शौक कैसे पाला, कैसे सोचा कि आज हमें लिखना पढ़ना चाहिए?
एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको बताया कि मैं बचपन से कुछ क्रिएटिव प्रवृत्ति का रहा हूँ। मैं एक चीज से बंद कर रहना नहीं चाहता था। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया मैंने, तो मेरे दिमाग में आया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ठीक कर लिया है, कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए। तो इस डिफरेंट करने की लगन ने और क्रिएटिव और इमेजिनेशन दिमाग में आती गई, और मन में अच्छा वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने ज्यादा किताबें लिख जाऊंगा जिंदगी में कभी भी। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। बस यही सोच रही कि मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते कुछ ऐसा डिफरेंट कर लो जो कुछ नया दे जाए, बस इसी सोच से मैंने उल्टा लिखना शुरू
लिख जाऊंगा, वो भी अलग तरीके की भाषा निजात करके। आपसे अगर पूछा जाए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी, तो आप उसका क्या जवाब देंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपने जितने क्वेश्चन किए वैसे आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इतने बढ़िया क्वेश्चन आप लेके आई हैं, और मुझे इनका क्वेश्चन का आंसर देने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। मैंने एक विचार अपने उस जिंदगी में लिखा हुआ है, बहुत पहले मैंने विचार लिखा था, आपने देखा होगा सुख और दुख।
जी।
मैं अक्सर खे को देख लो जो सुख में भी है और दुख में भी है, और हमेशा सुख में भी ऐसा ही दिखता है और दुख में भी ऐसा ही दिखता है, उसकी बनावट में कोई फर्क नहीं आता है, और दोनों परिस्थितियों में ऐसा रहता है। ये जो ये शब्द है ना, ये जो शब्द के अंदर एक अक्षर खे है ना, मुझे एक विचार ही है जो मुझे संभालता है।
जी जी।
और फिर भगवान भी तो है
जी,
हमारी सुनते हैं, ये तो ये भी पूरा विश्वास है, आप भी विश्वास करते हो, मैं तो विश्वास करता ही करता हूँ। खैर, और सबसे बड़ी बात है इस दुख की घड़ी में सबसे बड़ा है कि आपका दृढ़ संकल्प, और उसका संकल्प सबसे ज्यादा मेरे को उस समय आया जब मैं 9 महीने खाट पे रहा।
जी
मेरी विल पावर ऊपर वाले का आशीर्वाद मैं कहूंगा कि विल पावर मेरी उसी समय बढ़ी। मैंने
जी
इतने अप्स डाउन देख लिए लाइफ के अंदर, एक्सीडेंट भी देख लिया और जॉब भी चला गया, डिप्रेशन में भी चला गया, लेकिन विल पावर ने मुझे दोबारा से खड़ा किया। तो इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल जो घड़ी है, इस घड़ी में मुझे मेरा दृढ़ संकल्प और मेरे परिवार के लोग, मेरे सच्चे मित्र, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। क्योंकि अगर मित्र ना होते तो 14 बोतलें जो खून मेरा चढ़ा है, जो मेरे को मैंने जो दिया है, जिनका मैं ऋण अपनी जिंदगी में कभी चुका नहीं सकता हूँ, वो दोस्तों की बदौलत है जिन्होंने मुझे दिया था।
जी
खून मेरी नसों में है, तो ये ऋण मेरे ख्याल से मैं अपने 14 जीवन में भी नहीं, मैं
जी
उनको।
जी जी और ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए हमारे जीवन में कई लोग आते हैं जो हमारे लिए अच्छा भी करते हैं, और कहते हैं कि जो लोग बुरा भी करते हैं एक तरीके से हमारे लिए अच्छा करके जाते हैं, हमें सीखने का एक मौका दे के जाते हैं।
बिल्कुल
लेकिन
बिल्कुल
आपने इसमें अपना बड़प्पन दिखाया कि जिन लोगों ने भी आपके लिए जो भी अच्छे कर्म किया आप उनको हमेशा याद रखते हैं और उसके लिए
बिल्कुल
अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
बिल्कुल आप यकीन करेंगे, मैं जिस जॉब में था, मेरा जिस कंपनी में उस समय मैं काम करता था, हम लोग 65 लोग उस ग्रुप में थे काम करने वाले, ठीक
जी
है। और सौभाग्य की बात, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे ही डिपार्टमेंट का आदमी मुझे अस्पताल तक पहुंचा के आया था।
जी
और एक सबसे बड़ी बात, वो इसलिए पहुंचा के आया क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, भीड़ हो रही, कौन जाता है, किसको क्या लगी है, देखना है
जी
तो देखना, नहीं देखना है तो अपने रास्ते से निकल जाओ। लेकिन हमने जो कंपनी की ड्रेस पहन रखी थी, उस ड्रेस ने मेरे को बचाया। उस भीड़ में उस ड्रेस ने उसे पहचाना कि भाई मेरा, मेरी कंपनी का बंदा है। और
जी
आप यकीन करेंगे कि वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जा रहा था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी,
ओके
उसने उसको अपनी वाइफ को छोड़ दिया और उसे ड्राइवर से कहा कि अब मेरी वाइफ को तू लेके जा, ये बंदा मेरे डिपार्टमेंट का बहुत सीरियस है। उसने मुझे अस्पताल पहुंचाया और जब
अच्छा
मैं 9 महीने बाद घर, मैं जब अस्पताल में अपने कंपनी में जॉब पर पहुंचा, तो आप यकीन करेंगे कि मैंने उसको दंडवत प्रणाम किया। मैं जैसे मुझे वो दिखाई दिया और मैं बिल्कुल उसको जैसे भगवान के सामने पड़ जाता, मैं ऐसे ही वहीं सब मित्रों के सामने वहीं मैं लेट गया था उसके। और मेरी मम्मी मुझे उससे कहा कि मेरे को मिलवाना, लेकिन आज तक वो मम्मी से मिलने नहीं आया।
अच्छा
एक दिन वो मेरे को मिल गया रास्ते में, और वो बिल्कुल चेंज हो गया था, जो आदमी उपद्रवी आदमी थे बिल्कुल चेंज हो गया, भगवान की पूजा पाठ में लग गया। एक दिन मुझे वो मिल गया तो गाड़ी से उतरा, अरे सर कहाँ घूम रहे हो, मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ जॉब से, मैं दूसरी कंपनी में था, पास में दूसरी कंपनी में जॉब लग गया। उस
जी
थोड़ा पर देखिए, उसने मुझे देख करके गाड़ी रोक ली और उसने मेरे को गले से लगा लिया।
जी
मैंने कहा भाई सुनील भाई, मैं तुम्हारा जिंदगी में कभी एहसान नहीं भूलूंगा ना, मैं ऋण चुका नहीं सकता हूँ। तो दोनों लोग भावुक हो गए हम लोग। तो जिंदगी में दोस्तों को कभी भूला नहीं जाएगा, उस दोस्त को
जी
तो भूला जाएगा जैसे मेरे को जिंदगी के लिए, मेरे अपनी अपनी वाइफ को छोड़ दिया, वो चली गई और मेरे को अस्पताल लेके गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
जी 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 तो सबसे अच्छा तो आपका वो दोस्त जिसने आपको बचाया, और सही में ऐसे लोग अगर होते हैं, वही लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया को बचा के रखे हुए हैं
हाँ
तो
बिल्कुल
अच्छाई
बचा के रखते
है
हैं,
और
बिल्कुल
चारों तरफ अच्छाई है।
हाँ। और मैं मेरी ससुराल एक्चुअली में एक कस्बे में है, मैं वहाँ जाता हूँ, तो मुझे देखकर इतना अच्छा लगता है कि वहाँ शाम के टाइम बड़े बुजुर्ग और महिला और जो वृद्ध लोग हैं, पूजा पाठ में इतने तल्लीन हैं। तो मैं अपने साले वगैरह, मैं अपने उनसे कहता हूँ, मैंने कहा यही है इस देश को बचाने में, इनका इन लोगों का बड़ा हाथ है, ये पूजा पाठ
जी
कर रहे हैं, ये सुबह शाम तक पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो
जी
लगता है कि कुछ तो है, कुछ पावर तो
जी जी आपने विश्व का रिकॉर्ड भी बनाया है। इस रिकॉर्ड के बनने के उपरांत आपसे आसपास जो लोग थे उन लोगों का कुछ तो रवैया बदला होगा, जैसे आपने विश्व रिकॉर्ड जो बनाया अभी
मेरा
तो
रिकॉर्ड बना सन 2012 में,
जी
और ये विश्व रिकॉर्ड है और कई रिकॉर्ड में है। तो ये सुई से दर्पण छवि में मधुशाला लिखने के लिए विश्व रिकॉर्ड बना है।
जी
मैं बताता चलूँ, इस किताब को देखने के लिए लोगों की जो है ना बड़ी, वो ऐसे कैसे भीड़ में से निकल के आते हैं लोग, सर मुझे दिखा दो, मुझे जरूर देखने की बात।
जी जी
तो इस तरह का है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है भागवत गीता से, भागवत गीता उल्टी लिखी,
जी
वो ठीक है, वो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक संदेश दिया था।
जी
मैं भगवान कृष्ण को सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर ही है वो भगवान के रूप में।
जी
और जिस रथ के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे हो और हनुमान की पताका हो, उसे हराने वाला कौन है?
जी जी
बिल्कुल, तो पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। उन्होंने बहुत कुछ दिया उस किताब के माध्यम से। उस किताब को तो वो आध्यात्मिक रूप में देखते हैं,
जी
उसको माथे से लगाते हैं। जब मान लिया कोई देखता है तो उसे माथे से लगाता है भाई, अच्छा। लेकिन सुई से जो लिखी है ना इस किताब को देखने के लिए, तो वाकई में मैंने देखा है कि लोग जुनूनी हो जाते हैं, भाई मुझे सर मुझे दिखा दो सर। कई लोग तो मेरे कह रहे सर पीयूष पीयूष जी सर इस किताब को कितने पैसे में देंगे आप।
जी
बहुत बहुत लोगों ने कहा है मेरे से। मैंने कहा भाई मैंने ये औलाद की तरह पाला है और
जी
औलाद कभी बेची नहीं जाती है। हाँ,
जी जी बहुत सही बात है।
तो स्वाभाविक है जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो लोग बाग आपके बारे में बात करते हैं और सम्मान भी होता है, इसमें कोई
जी
दो
जी
राय नहीं है, और बहुत जगह सम्मान भी हुआ है।
लेकिन आपसे मतलब एक इसकी अगर भीतर तक हम जाना चाहें, इसकी कहानी जानना चाहें कि एक छोटा सा लिखा हुआ एक जिसका आपने प्रयास किया वो विश्व
अच्छा
रिकॉर्ड तक पहुंचने में अचानक से तो नहीं पहुंच गया होगा। जैसे आपने बताया 2012 से आपने शुरू किया, सॉरी
हाँ,
2003
दो
2003 से शुरू
तीन से
किया।
लेकर 2015 तक। हाँ,
जी जी और
इतना इतना नहीं नहीं इतना आसान नहीं है रिकॉर्ड बनाना। पूरी बायकायदा जैसे आप उनको दोगे तो साल भर तो उनका प्रोसेस ही है उसको चेक करने का।
जी जी
वो बिल्कुल बायकायदा हर चीज चेक करते हैं, उसके बाद ही वो बनता है। तो प्रोसेस लगा, समय लगा इसमें। पहले तो मैंने लिखा, पहले तो मैं सोचता रखा हूँ यार इसको रिकॉर्ड में दर्ज कराया ना कराया, बड़ी आपको पता ना। फिर उनके पास डरते डरते वो एप्लीकेशन गई, एप्लीकेशन वो पास हुई, फिर उसके वेरिफिकेशन हुए, तो बड़ी बड़ी लंबी प्रक्रिया है,
जी
उसके बाद बनते हैं। ऐसा आसान नहीं है साहब बिल्कुल इस रिकॉर्ड बनाने।
जी, नहीं तो यही आसान नहीं है, पर आपने आसान बनाया अपनी जुनून
धन्यवाद
से, अपनी चाहत
धन्यवाद
से। जो
धन्यवाद। हाँ धन्यवाद,
कोशिश तो की ना आपने, शुरुआत की,
कोशिश
और
तो। हाँ
शुरुआत
हाँ
की तो
बिल्कुल,
अपने आप बन गई। जैसे आप डर के रह जाते कि ये इसको कौन विश्व रिकॉर्ड देगा, ये
हाँ, राइट राइट
कैसे
राइट, एक्चुअली
होगा।
आपकी बात में दम है। और ऐसा ही है कि आग आदमी प्रयास करता है और प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि मैंने बचपन में कहानी मैं आपको शेयर करता चलूं, तीन चीज मेरी जिंदगी में हमेशा रही है। एक बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी, कि कौवे ने घड़े के अंदर कंकड़ डाल के पानी ऊपर कर
जी
दिया। तो वो यार जब पीयूष गोयल, जब कौवा कंकड़ डाल के पानी ऊपर कर सकता है तो पीयूष गोयल तू लिख लिख के किताब पूरी क्यों नहीं कर सकता है? ये
जी
प्रेरणा, ये शब्द, ये कहानी मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। इसी कहानी से मैं मोटिवेट हुआ हूँ और मैं ये सोच के चलता कि अगर मैं सोचा हूँ और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो एक दिन काम पूरा होगा, चाहे मैं एक अक्षर लिखूं। ये सोच के मैंने लिखा और ये
जी
सोच कर प्रयास किया था।
आपने आपने चार किताबें भी प्रकाशित की हैं।
हाँ जी, हाँ
आपसे अनुरोध करूंगी कि उनके विषय में भी हमें संक्षेप में बताएं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिखने से पहले, जब मिरर इमेज में लिखने से, इसको बोलते हैं दर्पण छवि का लेखन,
जी जी
ठीक है ना, दर्पण छवि में लिखना। इससे लिखने से पहले मैं मैथ के प्रति मेरा बहुत रुझान था।
जी
मैथ ऐसा था मेरे लिए कि जैसे खाना नहीं खाना, बिना मैथ के खाना नहीं खाता था।
जी
मेरे लिए खाने के बराबर था मैथ। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही मेरे परिवार की कि फादर मेरे पोस्टिंग गांव में रहे, किसी कारणवश मुझे उस समय कोई वो नहीं मिला कि मैं हायर स्टडी नहीं कर पाया। ये मेरे लिए, मैं दिमाग में मेरे रहती है, मैं अपने मदर फादर को तो नहीं कहूंगा इस बारे में, ये क्योंकि डेस्टिनी ने कुछ और लिखा हुआ था मेरे बारे में,
जी
ये मैं सोचता हूँ। मुझे मैथ का, अगर मैं हायर स्टडी करके मैथ के लिए जाता तो शायद हो सकता है कि ये 4 या 16 किताबें ना लिख पाता। लेकिन मुझे बचपन से मैथ का शौक था, तो मैंने बहुत सारा काम मैथ के अंदर किया हुआ था।
जी जी
अब चूंकि मैथ के अंदर काम किया हुआ था तो मुझे पता था कि यार पीयूष, ये एक ही तरीका है जो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है कि किताब को प्रकाशित किया जाए।
जी
मैंने बहुत प्रकाशकों से बात करी लेकिन सब जगह से रिजेक्शन मिला मेरे को।
अच्छा
लेकिन मैंने प्रयास में कभी कोशिश नहीं छोड़ी, मैं प्रयास करता रहा, यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ से वहाँ, इस तरह से मैं प्रयास करता रहा। और इस प्रयास में मेरा साईं बाबा का बहुत बड़ा रोल है। मैं साईं
जी
बाबा को मानता हूँ। मैं साईं बाबा के मंदिर में गया, मैंने बाबा से कहा, मैंने बाबा, मैंने पहले ही बताया आपको कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने बाबा से प्रार्थना की थी, बाबा मेरी बिटिया 2 महीने की है, मुझे जब तक जिंदा रख, जब तक मैं इसके हाथ पीले ना कर दूं। तो मंदिर में गया, मंदिर में वहां जाकर के मैंने बाबा से कहा, मैंने बाबा 10 साल हो गए मेरी किताब प्रकाशित नहीं हो रही है, मैं किताब वहीं छोड़ आया।
जी
लेकिन मन नहीं माना, फिर मैं वहाँ पंडित जी पास गया, दोबारा किताब ले आया। मैंने कहा नहीं, लेके चलते हैं। फिर मैं वापस ले आया। आप यकीन करेंगे, तीसरे दिन, एक दिन छोड़कर तीसरे दिन, यानी बृहस्पतिवार को मंदिर गया, शनिवार में प्रकाशक का फोन आ गया, पीयूष जी आपकी किताब छाप रहे हैं। मैं, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि
जी
मेरी पहली किताब छप रही थी। तो इसमें मेरे गणित के विषय में है, ये गणित पर आधारित है सारी सारी। दूसरी मेरी है इजी स्पेलिंग। आप चूंकि इंग्लिश की टीचर हैं,
जी जी
इजी स्पेलिंग इसमें भी बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली में क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, कुछ आपको मोटिवेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं।
जी
तो 1987 में जहाँ से मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं मुजफ्फरनगर में रहता था। मुजफ्फरनगर एक जगह आपने नाम सुना होगा,
जी
मुजफ्फरनगर
जी
हरिद्वार के
जी
पास,
जी उत्तर प्रदेश
वहाँ उत्तर प्रदेश में, ननिहाल है मेरा वहाँ पे। तो मैं शाम के समय मैं ऊपर अपने तिमजले पे था, तो एक बच्चा पीछे मकान पे कारपेंटर की स्पेलिंग याद कर रहा था।
अच्छा
उसको कारपेंटर की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। मैंने उसको देखा, मैंने स्टडी किया कि यार ये चार चक्कर काट लिए उसने, 200 फीट की छत थी उसकी लंबी चौड़ी। तो मैंने कहा यार इसको कारपेंटर की स्पेलिंग याद नहीं, तो उसको कारपेंटर की स्पेलिंग याद कराएंगे। मैंने कहा बेटा मैं अगर तेरे को कारपेंटर की स्पेलिंग याद कराऊं तो मुझे क्या खिलाएगा? कहने लगा अंकल मुझे याद करा दो, कल को टीचर मारेगी और मैं आपको लॉलीपॉप खिलाऊंगा।
अच्छा
अब मैंने कहा बेटा तू छोटा है, लॉलीपॉप तो हम खिलाएंगे तेरे को, लेकिन तेरे को कारपेंटर की स्पेलिंग याद करा देते हैं। कहने लगा अंकल प्लीज याद कराओ ना। मैंने कहा बेटा कार की याद है? कहने अंकल याद है। मैंने कहा पेन की याद है? कहने अंकल याद है। कहने अंकल कारपेंटर की स्पेलिंग याद होगी। तो उसको आप यकीन करेंगे, उसको वो जो कारपेंटर की स्पेलिंग याद होगी, मैं तिमजले से नीचे गया, वो फिर दौड़ दौड़ा दौड़ा आया, मैं मार्केट गया, उसको लॉलीपॉप दी, वो गले से मिला मेरे। तो ये जो उसको कारपेंटर की स्पेलिंग याद कराई, वो वहां से मुझे प्रेरणा मिली।
जी
सन 2003 में मैंने बताया ना, मेरा जॉब चला गया था, लेकिन मैंने समय का यूटिलाइज किया। मैंने 7 महीने डिक्शनरी को स्टडी किया
वाह
और मैंने उसके अंदर स्पेलिंग्स याद करने के नए नए तरीके मैंने उसमें से निकाल करके
वाह बहुत
उसको किताब के रूप में दिया है। और
सुंदर
वो सबसे ज्यादा बिकी किताब, वो मेरे घर पे लोग बाग लेने आए उस किताब को। 100 किताबें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दी बच्चों के बेनिफिट के लिए।
जी
उसमें मेरे बहुत सारे तरीके मैंने बताए, मैंने ये तरीके बताए। 34 अक्षर ऐसे हैं जिसके अंदर पांचों वोवेल नहीं है,
अच्छा
23 अक्षर ऐसे हैं जिसके अंदर पांचों वोवेल है, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे लाइव है, LIVE, बिना अक्षर चेंज किए हुए कुछ पीछे आ गए तो इविल बन जाता है, EVIL,
अच्छा
TIDE, टाइड, वो पीछे से पढ़ो तो एडिट बन जाता है, EDIT,
ओके
TIME, पीछे से पढ़ो तो EMIT। ऐसे मैंने अक्षर बहुत सारे निकाले हैं
जी जी
स्टडी करके। कुछ ऐसे जैसे आपने हार्ट सुना होगा, हार्ट,
जी जी
HERT,
जी
अगर हार्ट में से आगे से H हटा के पीछे लगा देते हैं तो वो अर्थ बन जाता है। तो इस तरह से मैंने नए तरीके दिए हैं बच्चों को याद करने, बच्चों को
कमाल
पसंद
है।
आया है
और इस
जी।
चीज की जानकारी आश्चर्य है हमें भी आज तक नहीं थी, पर ये तो एक तरह से वरदान है बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए
हाँ
जिनको
जी,
बड़ा मुश्किल होता है स्पेलिंग याद करना।
मैं याद
तो
करता हूँ, मैं दावे के साथ करता हूँ, आज तक वो जिसे कारपेंटर की स्पेलिंग याद है भूला नहीं है,
कभी भूलेगा भी नहीं, वैसे बच्चे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप जो तकनीकें
हाँ
बता रहे हैं ये तो सही
बिल्कुल,
में आपके प्रयास का, या कह सकते हैं आपने जो रिसर्च किया उसके आधार पे आपने वो तरीके निजात किए हैं।
अब
तो
बिल्कुल। अभी एक मैं बताता हूँ आपको, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मान लिया कोई हम ब्लैक बोर्ड पे अक्षर लिख देते हैं टी, टी
जी
से पीछे ए लगा दो, एच
जी
बन गया,
जी जी हीट
उसके पीछे ई लगा दो, हीट बन गया,
बन गया
और एच लगा दो, हीट बन गया, और उसके बाद सी लगा दो तो चीट बन गया, और सी की जगह डब्ल्यू लगा दो तो वीट बन गया। तो बच्चों को अगर ये तरीके बताया तो बच्चे, आप यकीन करोगे, बच्चों को बताया जाए तो बच्चे जब मान लिया बोर्ड पे उनको समझा रहे हो तो बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बीट में से निकल के आते हैं और अंकल के गले चिपट जाते हैं, अंकल बस आपने तो कमाल कर दिया, हमें तो बहुत अच्छा तरीका लगा आपका। अब वो जो पल होते हैं ना, जो पल होते हैं जब वो गले आके मिलता है, छोटा सा बच्चा आकर के वो आपके पैरों में आके वो गले वो लगाता है, तो ये
जी
पल उस पैसे से ज्यादा है जो मैं इनको पैसे में अगर कहीं सेल करूं
जी जी जी
तो वो पल मैं, वो पल वो
बिल्कुल
भूले
सही,
नहीं जाते।
ये शिक्षक ही ऐसे कह सकता है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ तो आपके इस इमोशन को समझ सकती हूँ। हमारे लिए बाकी चीज उतने मायने नहीं रखते जितना हमारे बच्चे जब हमसे कहते हैं कि आपने जो दिया वो अमूल्य है।
हाँ, और मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मैंने लास्ट आखिरी में मैंने लिखा भी है कि मेरे गुरु जहां भी मुझे मिल जाते हैं
जी
आप यकीन करेंगे कि अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और मेरे को बेटा गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता नहीं हूँ, बेटा के साथ बैठा हूँ और मुझे कहीं गुरु सामने दिखाई देता है तो मैं गाड़ी रोक करके उनके पैर पकड़ता हूँ।
जी
ये मेरी फितरत रही है, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया।
जी जी
और मैं घर से बाहर निकलता हूँ, 54 साल का हूँ, मेरी मम्मी पापा अब तक कहते हैं कि तू जब दूसरी क्लास में था जब से लेकर आज तक तू हमको पैर पकड़ता हुआ आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है।
जी
तो ये जब वो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ,
जी जी
ये मेरे लिए बड़ी ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेरी तीसरी किताब है पीयूष वाणी। पीयूष
जी
वाणी मैंने इसलिए रखा था कि पीयूष का मतलब है अमृत,
जी
तो मैंने पीयूष वाणी इसलिए रखा कि अमृत वाणी हो जाएगी, जिसमें मेरे अपने विचार हैं और इसमें इंग्लिश हिंदी के हैं। और चौथी पुस्तक है मेरी सोचना तो पड़ेगा ही,
अच्छा
क्योंकि जिंदगी में सोचना तो पड़ेगा ही, जिंदगी का अगर जीना है तो जीने तो चढ़ने पड़ेंगे।
अच्छा
ये मैंने सोच करके, एक्चुअली मैंने एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पर, इस
जी
किताब को लिखने की कहानी थी, क्योंकि लॉकडाउन में थे हम लोग और घर पे थे, क्योंकि जो आजकल पता है, तो मेरे दिमाग में आया, ये लॉकडाउन से पहले की बात है वैसे, तो
जी जी
दिमाग में आया कि यार कुछ ऐसा कर लो कि अपने विचारों को पब्लिक तक शेयर किया जाए।
जी जी
तो मैंने डेली, आप यकीन करेंगे, रात को मेरे को डेली का टारगेट था कि 365 थॉट मुझे लिखने हैं,
जी
लेकिन वो 365 थॉट पूरे नहीं हो पाए, 102, 110, 115 थॉट जब पूरे हो, तो मेरी सोचने की क्षमता भी थॉट्स के प्रति जो है ना ऐसी
जी
होगी कि यार मैं कितने थॉट्स कहाँ से लिखूंगा,
जी
विचार नहीं आ रहे थे। 110 थॉट्स लिखने के बाद मैंने ग्रुप बनाया, वो शेयर करता था, लोगों के अप्रिसिएशन मिलते थे कि पीयूष जी बहुत अच्छा लिख रहे हो, और कुछ लोगों के सुझाव आया कि पीयूष जी से किताब के रूप में कर लो, आप तो
ओके
लिखते बहुत सारे।
जी
तो मैंने कहा भाई ठीक है, प्रकाशक से बात हुई, प्रकाशक भी इजीली मिल गया मेरे को, उसने कहा कि पीयूष जी भेज दो, आपकी किताब छप जाएगी। तो ये चौथी किताब मेरी अभी पब्लिश हुई है, इसमें मेरे मोटिवेशनल 110 थॉट्स हैं और ये
जी
अमेजन पर गोदरेज पे है।
बहुत
तो
अच्छा
ये मेरी चार किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, पांचवी मैं लिख रहा हूँ, और पांचवी ऐसी लिखी जाएगी, नॉन फिक्शन फिक्शन है बेसिकली वो,
जी जी
और वो बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट है। आप, मैं उसका अभी जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो कहानी बहुत तो वैसी है,
जी
आपको मैं जरूर भेजूंगा, वो छपके आएगी, तो आप सोचेंगे कि यार ये आदमी क्या सोच सकता है और क्या कर सकता है,
जी
उसमें बिल्कुल अलग ही तरह का वो है, तो वो मैं आपको जरूर प्रेजेंट करूंगा भविष्य में। ठीक है जी,
आप पीयूष जी आप एक एक करके पत्ते खोले जा रहे हो। कहते हैं ना जब हम लोगों को कार्ड खेलते हुए देखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक एक पत्ते खुल के आते हैं और एक पत्ता दूसरे पत्ते से भारी होता है, तो आप वैसे ही एक एक किताबें लेके आए हैं। और अभी मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप डॉक्टर पीयूष गोयल हैं, तो मेरी भी जिज्ञासा है कि मैं जानूं कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है या फिर
नहीं नहीं नहीं
लेखनी
नहीं
में।
हाँ लिखने में क्या हुआ, ये नहीं कह मैंने सुनी से जो मैंने किताब लिखी है ना, इसने
जी
मैंने इसने मुझे मंच दिया और सम्मान दिया और प्रोत्साहित किया।
जी
एक संस्था है उसको मैंने जिक्र किया और उन्होंने कहा था कि हम इस किताब लिखने की किताब के लिए हम आपको ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित करते हैं। तो 2014 में फरीदाबाद में प्रोग्राम हुआ था, वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से,
अच्छा
इंग्लैंड की है ये,
जी
तो वहां से मिला है सब कुछ। ठीक है जी, तो
वाह
ऑनरेबल हो गया। वैसे मैं डॉक्टर लिखता हूँ, अब वैसे लिखा हुआ है लेकिन मैं अपने आगे डॉक्टर लिखना, मेरे फादर डॉक्टर हैं बेसिकली, मैं डॉक्टर लिखना नहीं चाहता।
नहीं, अगर उपाधि मिली है डॉक्टरेट की तो लिखने में क्या है।
हाँ हाँ लिखना, मैं लिखा हुआ लिंक्डइन पे लिखा हुआ है वैसे।
जी। और आपने अभी जैसे अपनी कुछ जो भी आपने मुश्किल घड़ी के बारे में बताया, अपनी उपलब्धियों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है, पर आपसे एक पूछना चाहूंगी कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इन सारी उपलब्धियों में। आपने जैसे चार
हाँ
किताबें छपवाई,
हाँ सबसे बड़ी
16
उपलब्धि तो
किताबें
यही है
बनाई।
कि
जी
सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि जी मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखा करके कामयाब बना दिया।
जी
अगर मुझे वो अगर पढ़ाते ना लिखाते ना, तो हो सकता है कि जीवन में कुछ और कहीं और किसी मोड़ पे होते और अपनी आजीविका के बारे में सोच रहे होते। तो
जी
उनका 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 हमारे, मुझे पता है, अब मैं आपको बताता चलूं, आज मेरे फादर पैरालाइज है
जी
और मैंने उनको देखा है मेहनत करते हुए, कि सैलरी 77-78 में उनकी सैलरी करीब मेरे ख्याल से वो 250 रुपये, 300 रुपये, 550 रुपये, 750 रुपये, मैंने सुना है मम्मी पापा
जी
से बात करते हुए छोटे से, तो एक साइकिल होया करती थी, साइकिल पे वो 24 किलोमीटर हम
जी
लोगों के लिए जाया करते थे। वो चीजें मायने रखती हैं जिंदगी में।
जी
एक आदमी 7 साल तक 24 किलोमीटर पर डे साइकिल चला के जा रहा है, किसके
जी
लिए? अपने बच्चों के लिए।
जी
ये हमें पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया, अब ये उपलब्धि है। उसके बाद आप पर निर्भर है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। ये तो यही है उपलब्धि कि उन्होंने हम लोगों को कामयाब बनाया पढ़ा लिखा करके। हम 4 बहन भाई हैं, मैं सर्विस में हूँ, एक बहन है हमारी, दो मेरे भाई हैं जो बिजनेस में हैं, और मेरी बहन जो है बहुत अच्छी जगह है, हमारे बहनों भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने कहा ना कि सबका आशीर्वाद है, अच्छे
जी
माता पिता मिले हैं, अच्छे भाई बहन मिले हैं, अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे बहनों भी मिले हैं, अच्छे भांजे हैं, तो लाइफ अच्छी कट जाती है।
जी जी जी
और वैसे फिर लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है, वैसे जीवन में ईमानदारी भी कोई चीज है।
जी
तो ये उपलब्धियां ही हैं, ये ईमानदारी भी एक उपलब्धि ही है, क्योंकि हमने अपने फादर से सीखा है। मेरी मदर कहती थी कि किसी, मान लिया कोई आप खाना खा रहे हो और कोई मांगने आ गया है, तो उसे दरवाजे से वापस मत दे दो, कुछ ना कुछ दे के भेजना। तो
जी जी
ऐसा ही है, हम ऐसे ही करते हैं।
जी
अपने अपने बच्चों को बोला हुआ है मैंने, तो
जी
मैं मान लिया मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मम्मी पापा के पैर पकड़ के निकलता हूँ, तुम लोगों को भी यही करना है, और किसी का निरादर नहीं करना है, पुण्य कमाना है, पाप नहीं कमाना, ध्यान रखना।
जी और जैसे आपने अभी बताया कि ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपके माता पिता ने अभी आपको पढ़ाया लिखाया, और उसकी वजह से आप आज आत्मनिर्भर हैं और ईमानदारी को इतनी तवज्जो देते हैं।
बिल्कुल
तो
बिल्कुल।
अगर उन पूछा जाए कि आपने अपने माता पिता या गुरु से किसी से भी सबसे बड़ी कौन सी सीख ली है?
बिल्कुल बिल्कुल। आप ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको वाकई में साधुवाद के पात्र हैं, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्पिरिचुअल भी है और कुछ अपने दिल को छूने वाले भी हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने माता पिता का आदर करो, ये तो स्वाभाविक है, ये तो मैं सबको बोलता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले 3 ही बातें बोलता हूँ कि अपने माता पिता का आदर करो, गुरुओं का सम्मान करो। जहाँ भी मिले उन्होंने पढ़ा लिखा के कामयाब बनाया भाई,
जी
उन्होंने सिखाया बहुत कुछ। और अपने से बड़े जो हैं, अपने से जितने भी बड़े हैं, उनसे कुछ ना कुछ, मान लिया अगर कहीं बैठे हो बातचीत हो रही है, तो हरेक चीज, हरेक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है।
जी जी
मेरे में उल्टा लिखने की खासियत है, या किसी और में क्रिकेट खेलने की खासियत हो सकती है, हो
जी
सकता है उसको बोलने में इतने अनुपूर्ण हो कि उसकी बातों में बहुत बढ़िया उसको स्टोरी टेलर हो। आप अपना ब्लॉग लिखती हैं, आपने इतने अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये सब एक हर एक आदमी में अच्छे अच्छे गुण होते हैं, तो गुणों को ग्रहण कर लो।
जी जी
और दूसरा ये है कि अपने से छोटों को उनके अच्छे काम के लिए हमेशा प्रोत्साहित करो,
जी
ये मेरा मानना है। ये तो मानना है कि कोई बच्चा है उसको प्रोत्साहित कर दो ना, तो वो हो सकता है कि कुछ बड़ा कर जाएगा। उससे ये कह दो कि यार तो मुझे तेरे से तो गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, तू कहां से पदक क्यों लेकर आया? तो नहीं, कहां से पदक लेकर आया, अगली बार बेटा ये बहुत बढ़िया,
जी
अभी चढ़नी है, अभी कहां से पदक, तो तुम्हें अभी से कहां से लिया है, अभी सिल्वर लेना आया, फिर तुमको गोल्ड भी लेना है, इस तरह से बात करोगे तो हो सकता है वो कुछ कर जाएगा। अब उससे
जी
बोलोगे यार नहीं, यार तूने यार क्या करा यार, मुझे तो गोल्ड चाहिए था, कहां से लेकर आया, तो वो डिमोरलाइज होने की तरफ चल जाएगा। तो उनको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है।
जी आपके बारे में एक और रोचक बात की जानकारी हमें मिली कि आप कार्टून भी बनाया करते हैं और आपने करीब हजारों कार्टून बनाए हैं, तो आपने उस कला को बीच में ही छोड़ दिया, उसकी कोई खास वजह है?
हाँ जी, वजह है, बहुत बड़ी वजह है, ये मेरा शौक था, आजीविका नहीं थी,
जी
ठीक है ना। और जिंदगी में मैं अचानक मेरी जिंदगी में मोड़ आ गया,
जी
मैं बनाते बनाते मैं एक्सीडेंट हो गया, 9 महीने खाट पे रहा, तो सब कुछ सबसे पहले तो यही दिमाग में था कि यार सर्वाइव कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइव
जी
होगा, तो जो क्रिएशन थी वो दिमाग की दिमाग में ही रहेगी। और फिर
जी
जो आपको कहा कि 9 महीने खाट पे आदमी रहेगा और 3 महीने तक बिल्कुल सीधा, जो करवट भी नहीं ले सकता,
जी
तो क्या तो वो सोचेगा और क्या वो बनाएगा, और जब वो जो चीज ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर वो ब्रेक हो जाती है, तो ये भी कारण रहा। और फिर एक जगह से दूसरी जगह प्लान भी करना पड़ा,
जी
तो ये कारण रहा बहुत बड़ा। और इसी उधेड़ बुन में कि अपनी आजीविका पालनी है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, और आजीविका पालने के लिए इसी उधेड़ बुन में जारी नहीं कर पाया, बस यही कारण था। क्रिएटिव दिमाग तो अभी भी है, अब दोबारा से हो गया है, कभी कभी अपने बच्चे के साथ बैठ जाता हूँ तो बता देता हूँ कि भाई ऐसे बनाना, क्योंकि मेरा जो बीच वाला बेटा है ना, उसकी आर्ट बहुत अच्छी
जी
है, अभी वो बिजनेस में है, वो भी कैरिकेचर वगैरह बनाता था, तो बहुत अच्छे बनाता था, बहुत ही बढ़िया फाइल बनाई हुई है उसने। तो हो सकता है मेरे से कहते हैं कि सर आपके जो गुण है वो आपके बेटे में चले गए। तो
जी
एक्चुअली में आप देखते हैं कि एक मैकेनिकल इंजीनियर जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस है, और एक शौकिया तौर पर अगर वो कार्टूनिस्ट है, तो
जी
एक कार्टूनिस्ट की कितनी सैलरी होगी और एक मैकेनिकल इंजीनियर की 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद कितनी सैलरी होगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।
जी
तो
जी
यही कारण रहा कि मैं उसको जारी नहीं रख पाया।
और आपके कुछ कार्टून्स भी मैंने देखे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और बड़े ही खूबसूरत, वैसे जो आपने बताया न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपके आया करते थे, तो बड़ा अच्छा
अरे
लगा देख करके। तो जैसे जैसे आपके बारे में हम और जानते जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है जो अभी तक हमें मालूम नहीं है, तो आपसे अनुरोध करूंगी उस मूवी के बारे में भी हमें बताएं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली में क्या है, मुझे क्रिकेट का बहुत लगाव है।
जी
क्रिकेट जैसे मैच का पैशनेट हूँ, वैसे ही क्रिकेट का भी हूँ। तो
जी
मैं जिंदगी में कई बार सोचा, मैंने कहा यार क्रिकेट को अगर पवेलियन में बैठ के देखा जाए या फिर अगर वो टिकट लेके अगर उसमें दर्शक दीर्घा में बैठ के देखा जाए तो पता नहीं लगता कि बॉल कहाँ गई और कहाँ चौका गया और कहाँ क्या शॉट खेल लिया। तो दिमाग में रहता था कि नहीं, एक ही अंपायर ही एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होकर खड़ा होकर देख सकता है। एक जो चीज ये दिमाग में रहती है, और फिर जो है क्रिकेट प्लेयर से मिलने का मौका भी मिलेगा और उनको अगर वो अच्छा शॉट खेलता है तो उसको अप्रिशिएट करने का भी मौका मिलेगा।
जी
ये कारण रहा क्रिकेट अंपायरिंग की। मतलब बहुत सारे मैच किए हैं क्रिकेट अंपायरिंग के और बहुत सम्मान मिला है क्रिकेट अंपायरिंग करके। मैं पूरा पूरा क्षेत्र जानता है कि ये अंपायर साहब हैं क्रिकेट के, तो
जी
मुझे आज भी लोग आमंत्रित करते हैं। क्रिकेट भी टूर्नामेंट होता है तो एज ए चीफ गेस्ट बुला लेते हैं कभी, तो क्योंकि तो अब उम्र ऐसी है कि 20-20 ओवर का अगर मैच है तो खड़ा होने में दिक्कत होती है, वो
जी
समझ बात का। मतलब लोकल क्रिकेट अंपायरिंग की है, अभी इंटरनेशनल का आईपीएल में नहीं गया मैं, तो लोकल क्रिकेट अंपायरिंग में ही बड़ा सम्मान मिल गया। अगर वहां चले जाते तो और बहुत ज्यादा सम्मान मिलता।
जी
वैसे मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटरों से मिला हूँ, मुझे मिलने का मौका क्रिकेट में क्रिकेट अंपायरिंग होने के नाते मुझे मिला है। मिला ऐसे कि मैं फिरोज शाह कोटला में भी गया हूँ, करनैल सिंह स्टेडियम में भी गया हूँ। तो मुझे 1984 के क्रिकेट टीम जो वेस्ट इंडीज की थी, जो इंडिया की थी, बहुत सारे प्लेयर का मिलने का मौका मिला और मैंने उनको ऑटोग्राफ भी अपने संग में रखे हैं।
जी
तो ये तो मेरा क्रिकेट अंपायरिंग का रहा। ऑटोग्राफ भी कलेक्शन करने का शौक है मुझे, जिसमें मेरे अमिताभ बच्चन साहब हैं, सचिन भाई हैं, और मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके भी मेरे पास ऑटोग्राफ हैं। बीबीसी जी हैं,
जी
जी हैं, अटल जी से मिलने का मौका मिला। मिला तो मुझे बहुत सारे लोगों से है, कपिल देव जी से मिला। कपिल देव जी के बारे में वाकई में बहुत बहुत अच्छे इंसान है ये। वैसे अच्छे इंसान तो अच्छे तो सारे ही हैं, सचिन भाई भी बहुत गजब, अब्दुल कलाम साहब, जवाब नवी साहब,
जी
अमिताभ बच्चन साहब के साथ खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई ऐसा हो रहा है कि वाकई में लगता है कि भाई किसी के पास खड़े हुए हैं।
जी
अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है। तो ये तो ऑटो ये तो मिलने का मौका था, ऑटोग्राफ तो बांधना था।
जी
तो इसके अलावा मेरे पास स्टैम्प्स का भी कलेक्शन है, फर्जे कवर्स हैं, कॉइन्स एंड करेंसीज हैं, और
अच्छा
एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास पेन का कलेक्शन है, मोर देन 3,000 पेन कलेक्शन है
ओह
मेरे पास।
माय गॉड, तो आप इन पेंस
मेरे
का क्या
को
करते हैं, मतलब इनको आपने संग्रहालय की तरह सजा के रखा हुआ है या फिर?
3,000 पेन, आपको मैं बताऊं, कहते ना कि मन में था। मैं एक्चुअली में जब मैं मेरी 19 जिस कंपनी में काम करता था तो
जी जी
सैलरी बहुत अच्छी थी और फिर शादी नहीं हुई थी,
जी
तो बस एक ही एक शौक था कि यार पीयूष, एक मन में जिज्ञासा बना ली कि एक पेन डेली, एक नया पेन खरीदना और डेली एक नया पेन लगा के जाना।
जी
ये मन में विचार कर करके मैंने जो है 3 साल तक मैं पेन खरीदता रहा और पेन लगा के चाहता था। तो अभी मेरे पास रखे हैं, बच्चे यूज कर रहे हैं उनको। अभी आप यकीन करेंगे कि मेरे बेटे के एक दोस्त ने नीदरलैंड से पेन भेजा है,
वाह
और एक पेन सर पार्कर का पेन था, 1987 में लिया था या 1991 में लिया था, वो स्पेशल एडिशन था, 24 कैरेट का पेन था वो,
वाह
और उस टाइम वो 1,800 रुपये का आया था।
अच्छा 87 में 1800, मतलब लगभग 18,000 ही हुआ जी।
ज्यादा का हो गया जी वो पेन को मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में वो खबर छपी थी उस पेन कलेक्शन के बारे में, स्पेशल पेन था। इसकी भी एक बहुत बढ़िया कहानी मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता चलूँ।
जी
तो जब वो पेन मैंने देखा, मैंने मन बना लिया कि मैं पेन लेकर आना है, तो 20 पार्कर का पेन है, 24 कैरेट का पेन है, आज भी रखा हुआ है मेरे पास, गजब का पेन है,
जी
नहायत खूबसूरत पेन है, आज
जी
भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है।
जी
और जब जेब में लगाता हूँ तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे पास 24 कैरेट का पेन है।
जी
हाँ, बड़ी रखवाली करनी पड़ती है, अपने से ज्यादा रखवाली करनी पड़ती है उसकी। वो पेन मैं गया, जब मैंने उसको, मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए, 1800 रुपये हो गए जब मेरे पास, तो मैं गया जहाँ उनकी, एक्चुअली मैं एड छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में, तो नीचे वो लिखा हुआ था कि यहाँ पे ये अवेलेबल है पेन,
जी
तो मैं पेन लेने के लिए चला गया। जब मैं पेन की दुकान पर पहुंचा, जब मैंने उनको कटिंग दिखाई कि ये वाला पेन चाहिए, तो पेन वाले ने पूछा वाकई में ये वाला पेन चाहिए, मैंने कहा सर हाँ ये वाला पेन चाहिए, तो कह वो सर दो दो सर मुझे अपने उस जो थला होता ना, थले के बगल में कुर्सी थी, उस कुर्सी पे
जी
बिठा लिया और कहा साहब के लिए चाय लेके आओ। तो दो कप तो उन्होंने कॉफी पिलाई मेरे को, क्योंकि भाई 1800 रुपये का पेन सन 87-88 में लेना आया तो कोई बात ही होगी।
जी जी
और मैं उन्होंने फिर मेरा अपना एड्रेस लिखा अपनी डायरी में कि
जी
पीजी जब पेन आएगा तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। उनको फिर मैं वो पेन लेके आया जी, बड़े खूबसूरत, मैंने घर में किसी को बताया नहीं, आप यकीन करेंगे कि वो 1800 रुपये खरीद कर आया
जी
था मैं। अब मैंने अपने बच्चों को दिखाया तो बच्चे बड़े खुश होते हैं पापा के पास
जी
पेन, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेन है सारे सारे। और बट एक चीज उस पेन के साथ हुआ, अगली बार जब मैं गया, एक दिन उनका फोन आया मेरे पास,
जी
बहुत दिनों बाद फोन आया, म्यूजिक नया कलेक्शन आया, तो मैं उस दिन तो जा नहीं पाया, लेकिन 3 दिन बाद, 3 या 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद गया, जब उनकी दुकान पर पहुंचा तो मैंने कहा भाई साहब, वो भाई साहब का फोन आया था, वो भाई साहब बात कर रहे थे, उनके बड़े भाई साहब थे वो।
जी
तो
जी
भाई साहब जोर जोर से रोने लगे साहब।
जी
मैंने कहा सर क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे सर आपने गलत नहीं कहा, जिस भैया ने वो फोन किया था वो इस दुनिया में नहीं आया।
अच्छा
अरे साहब मैंने कही, मैं आप यकीन करेंगे मेरे को खड़ा होना भारी हो गया, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए वो जब रोने लगे। तो मैंने क्या हुआ जी, कहने लगे ऐसे एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई। तो फिर मैं उसके बाद नहीं गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई फिर उसके बाद जाने के लिए।
अच्छा
अब उस पेन के बारे में क्या हुआ मैं बता दूं आपको, कि एक सज्जन कस्टम में थे हमारे मित्र हुए बाद में, मैं जहाँ कंपनी में काम करता था, वो मुझे एक्चुअली में जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे मेरी लाइजनिंग थी कस्टम से, तो वो भी पेन के शौकीन थे,
जी
वो हमेशा डेली एक नया पेन दिखाया मेरे को। अच्छा उन्होंने मेरे बारे में बताया कि पीयूष जी पेन भी इकट्ठा करते हैं। मैंने कहा सर पेन आप भी इकट्ठे करते हो तो पेन हम भी इकट्ठे करते हैं।
जी
कहने कोई स्पेशल पेन आपके पास? मैंने कहा स्पेशल पेन है सर मेरे पास। कहने लगा कौन सा? मैंने कहा पार्कर का 24 कैरेट का, देखना चाहोगे? तो उन्होंने उस बात को मजाक समझ लिया कि यार ये क्या पेन दिखाएगा
जी जी
मैं। अच्छा वो पेन जब मेरा कलेक्शन में रखा हुआ था तो मुझे ढूंढना पड़ा, वो हफ्ते भर तक मिला ही नहीं मेरे को, पता नहीं कहाँ रखा गया कहाँ नहीं रखा गया, बच्चों को दे दिया बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दिया, तो मुझे बड़ी टेंशन हुई कि वो पेन कहाँ चला गया। तो फिर वो मिल गया मेरे को,
जी
मैं वो पेन लेके गया, मैंने उनको दिखाया, तो कहने लगा कि वाह पीयूष वाह क्या बात है, इतने साल बाद जिस पेन को मैंने खरीदने की पूरी दिल और जान से कोशिश करी वो पेन मुझे, मैं तो खरीद नहीं पाया लेकिन मैं तेरे पास देख करके बड़ा खुश हूँ, और मैं आज इसकी कीमत लगाना चाहता हूँ, कितने में देगा बता? मैंने कहा सर आप वैसे ही ले लो लेकिन मैं तुम बेचूंगा नहीं। कहने
जी
पीयूष 1 लाख रुपए। मैंने कहा सर वैसे ही ले लो 1 लाख रुपए क्या। लेकिन वो बेचारे समझदार थे, उन्होंने पेन मेरा नहीं लिया। तो उन्होंने बताया कि पीयूष मैं एक किताब, ये जो पेन लेने के लिए गया था, लेकिन अब क्योंकि महंगा पेन था और मैं अपनी वाइफ के साथ था, तो मैंने कहा था कि मैं भी जो है मैं इनको मार्केट अपनी वाइफ उसको इशारा कर दिया दुकान वाले को कि मैं थोड़ी
जी
देर में आऊंगा अकेला आऊंगा। कहने
जी
जब मैं 2 घंटे बाद गया तो वो पेन बिक चुका था यार,
अच्छा
मुझे बड़ा बड़ा जिंदगी में बड़ा खौफ था कि ये पेन खरीद नहीं पाया, लेकिन मुझे तेरे पास देख करके बड़ी खुशी है कि तेरे पास ये पेन है।
जी
तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी घटित हो जाती हैं, पता नहीं होता कि क्या करते हैं कितना करते
ये बड़ी रोचक घटना है। तो
हैं।
जी अभी आपसे भी मैंने इतने सारे सवाल पूछे, आपने इतनी सारी कहानियां और इतने प्यार से सुनाया है जो हर किसी को किसी न किसी तरीके से प्रेरित करता रहेगा कि आपने किस तरह से, मतलब चाहे जैसी भी परिस्थिति आई, आप आगे बढ़ते गए। और आपकी ये विनम्रता और जो कहते हैं ना मानवीयता, कि आप हमेशा ग्राउंडेड रहे, आपने इतनी तरक्की हासिल की, उसके बाद भी अगर आपसे बात होती है तो ऐसा लगता है कि आप हम में से ही कोई एक है। कोई ऐसे नहीं है जो आकाश में कहीं उड़ रहा है जिसको छूना मुश्किल हो।
नहीं, मैं कभी जिंदगी में आकाश को तो उड़ूंगा ही नहीं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ भगवान मुझे हमेशा ऐसे शब्द बोलने के लिए देना जिससे किसी का नुकसान ना हो,
जी
मैं कभी से कभी किसी से कड़वा ना मत बोलूं, और मेरे शब्द किसी के काम आ जाए, किसी की जिंदगी बन जाए, तो
जी
मैं समझ जाऊंगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है।
जी बहुत
मैं
बढ़िया,
हमेशा भगवान
बहुत
से प्रार्थना,
अच्छी सोच।
बहुत भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। देखो
जी
जी 54 साल के हो गए, 54
जी
साल में से 3/4 तो अपनी लाइफ हमने जी ली, 1/4 लाइफ अपनी रही है,
जी
हम आने वाली जनरेशन को क्या देके जाने वाले हैं,
जी
ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
जी
क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग पानी को व्यर्थ बेकार कर रहे हैं, व्यर्थ में मैंने देखता हूँ। अब पूछो मत, ये मेरे को कष्ट होता है कि पानी सबमर्सिबल पंप खोद करके उसको ऐसे ही बहा देते हैं,
जी जी
बड़ा दुख का विषय है। और कुछ महिलाएं मैंने देखा है कि उनको पता नहीं रोग है क्या है, कि पानी लेकर घर के दरवाजे के अंदर 1-1.5 घंटे तक पानी से उसको दरवाजे को ही धोती रहती है।
जी
तो हम अपनी जनरेशन को, अगली जनरेशन को क्या देके जाने वाले हैं? तो ये चीज मुझे बड़ा है कि भाई पानी बचा लो, पानी दिक्कत होने वाली है निश्चित रूप से। क्योंकि अभी
जी
तो ये पैसे में नहीं बिगड़ा, जिस दिन पैसे में बिगड़ना शुरू हो गया तो लोग आग गले को आ जाएगी।
जी
दूसरी चीज, तीसरी चीज, मैं स्कूल में जाता हूँ, इस चीज में हमेशा बोलता हूँ, जो मैंने बहुत सारे स्कूल बच्चे थे, मैं इंटर स्कूल में जाता हूँ किसी ना,
जी
वो तो क्या होते हैं, वो टीनेजर होता है, उनको पता नहीं होता कि उनको उनके वो क्या होता है, हवा में मोटरसाइकिल चलाएंगे जिग जैग पोजिशन में,
जी
आप समझ गए होंगे।
जी
17, 18, 19 साल का जो बच्चा है, एक तो स्पीड ज्यादा होगी, दूसरा मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेंगे गलत तरीके से करेंगे, और तीसरी चीज वो हेलमेट यूज नहीं करते। मैं हमेशा उनसे यही बोलता हूँ कि तुम अपने माँ बाप के सच्चे सपने हो और उनके अपने हो, कोई ऐसा
जी
कदम मत उठा लेना जिससे तो नुकसान हो जाए, तुम लोग या हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन कष्ट कौन भुगतेगा। तो
जी
बहुत सारे लोग जो है ना इस बात को मानते हैं, आज मैं मुझे मिलते हैं वो ये कहते हैं, पीयूष जी आपने आकर के, हम तो कोई बताने वाला नहीं है कि यार
जी
तुम हाई स्कूल में हो, तुम्हें अगर MBBS करनी है तो बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी,
जी
बताने वाला ही कोई नहीं है, तो गाइड करने वाला बहुत जरूरी है। तो ये तो बात रही अलग ही है। आपका क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, अभी आपने पूछा कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो रह गया और जो नहीं आया, तो
जी
यही है कि हाँ, वो पल जब मैं खाट पर 9 महीने पड़ा रहा और भगवान से यही प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, वो दिन दोबारा कब आएगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि
जी
दोनों पैरों की 5 हड्डियां टूट गई। ये
जी
वो पल थे, मैं डॉक्टर साहब से भी कहता था, जो डॉक्टर साहब मेरे पास आते थे सेठी थे, कहता यार मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे ऑपरेशन एक आदमी के नहीं,
जी जी
और वो ये मैंने उनसे ये बोलता था, मैं सर एक चीज बताओ कि मैं खड़े होने की पोजीशन में हूं या नहीं हूँ।
जी
कहने लगा पीयूष मैं तेरे को खड़ा करके रहूंगा, क्यों चिंता मत। तो यही सब मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। लेकिन मैं जब मैं खाट पर पड़ा होता था, जहाँ मेरे पास 18 किलो का, दोनों पैर पर, एक पैर पर 18 किलो, एक पैर दूसरे पैर पर 18 किलो वजन का वजन लटका होता था, तो जो लोग मेरे सामने जो मुझे देखने आते थे, जब वो खड़ा हुआ देखता था मैं उनको, तो मैं ये महसूस करता था यार ये कितने अच्छे आदमी अपने पैरों पर खड़े हैं, एक मैं हूँ जो मैं शायद हो भी नहीं पाऊंगा। तो ये चीज मेरे को बड़ा कष्ट देती थी, लेकिन भगवान ने दोबारा मेरे को इस लायक बना दिया कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और अपने पैरों पर खड़ा भी हूँ दोबारा।
जी बहुत बढ़िया, और सही में इसके लिए भगवान का शुक्रगुजार होंगे हम सब की।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
जी
बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिना तो पता नहीं था।
अंत में पीयूष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि हमारे श्रोताओं से कुछ ऐसी बातें बताएं। आपने ऑलरेडी बहुत सारी बातें बताई हैं जो अगर अपने जीवन में शामिल करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और सकारात्मक तौर पे अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, पर आप उनको अगर 3 बातों में निचोड़ कर बताना चाहें तो ऐसी कौन सी 3 बातें होंगी जो इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए?
तीन बातें, वैसे तीन बातें आपने कम पूछी, मैं बहुत सारी बातें हैं लेकिन तीन बातें मैं बताऊंगा जी। एक तो जो काम करते हैं उसके प्रति लगन आपकी होनी चाहिए, उसके प्रति लगन आपकी 100% होनी चाहिए।
जी
100% क्या, 1000% होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप बड़ा सोचेंगे तो छोटा तो आप अपना आप खुद कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IIT की तैयारी करते हैं तो UPTU, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसकी तैयारी तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी। तो मेरा कहना का ये है कि कभी हमेशा सोचे तो एक ऐसा सोचे जो आपके घेरे में हो और जिसको आप कर सकते हो, लेकिन बड़ा सोचे, उसके प्रति लगन रखें। और सच बात तो ये है कि अंत में यही बात कहूंगा कि जिस चीज को पाना चाहते हैं उसे दिल से लगा लो,
जी
ये बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज, एक मैंने थोड़ा सा लिखा है, फल की जो इच्छा रखते हैं ना वो फूल कभी नहीं तोड़ते हैं,
जी
फूल तोड़ोगे तो फल कैसे लगेगा। और तीसरा और आखिरी, सफलता का ताला एक चाबी से नहीं खुलता है, इसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं,
जी
आसान नहीं है। और जब
जी
आपको सफलता मिल जाती है उसको मेंटेन करना उससे भी कड़ा है।
जी
और अंत में एक बात मैं आपको कहता चलूं जो मैंने लिखी है, जिंदगी में सफलता चाहते हो तो डर को निकाल दो,
जी
डर तो निकालना पड़ेगा,
जी
डर ये निकालना पड़ेगा यार ये करूंगा तो उसका कहीं ये, सच्चा करो और अच्छा करो, ये तो बात दिमाग में रखो, सच्चा करोगे, अच्छा करोगे और काम के प्रति लगन रखोगे तो वो काम जरूर हो जाएगा, ये निश्चित है।
जी
क्योंकि मेरी सोच ये है कि आई हैव माइज टू गो बिफोर आई स्लीप,
या
मैथिली शरणगुप्त की एक कविता है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जगह
जी
जगह काम करो। यही शब्द हमेशा मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे हैं और यही शब्द मुझे आगे भी प्रेरित करते रहेंगे।
जी आपने जैसे एक कविता की बात बताई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और कविता है जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने उस रोड को चुना जिसपे बहुत कम लोग चले थे। तो आपने भी शायद उन्हीं सड़कों को चुना है अपनी जिंदगी में जिसपे ज्यादा लोग नहीं थे। और कहते हैं ना, भीड़ वाली मानसिकता से अलग होकर भी आप जिस भी रास्ते पे चले वहां सबसे आगे निकलते गए। तो ये जुझारू व्यक्तित्व अगर है, जो आपने बताया कि अपने काम के प्रति लगन से सफल होना मुश्किल नहीं होता, तो आपको भले ही 10 साल लगे, 15 साल लगे, लेकिन आपने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा और आप जहां भी हैं आज, आपके उस पहुंच के लिए आपकी लगन ही उसकी चाबी है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं। जिंदगी में मैंने हमेशा ये सीखा है, मैं आपको सही बता दूं, मैं एक बहन का भाई भी हूँ,
जी
एक माँ का बेटा भी हूँ, एक पत्नी का पति भी हूँ और एक
जी
बेटी का बाप भी हूँ। तो
जी
मुझे सम्मान करना आता है
जी जी
और मैं हमेशा सम्मान करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि वो किस पीड़ा में
जी
सहन करके के अपने बच्चों को कहाँ तक पहुँचाती है। मुझे
जी जी
पता है, मेरी मम्मी की मम्मी को मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी,
जी
हम 5 बजे ठंड में ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो आप बताइए कि कैसे भूल सकते हैं, नहीं भूला जाएगा। तो
जी
ये पल हैं जो बिल्कुल ऐसे हैं जिनको समेट के रखना जरूरी है, संस्मरण है जिंदगी के। और
जी
वो लोग बड़े अच्छे नहीं होते जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो
जी
मैं कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि अपने माता पिता, कम से कम माता पिता का तो ख्याल रखा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपके कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के मंच पर अपनी इतनी सारी जीवन की चाबियों को सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत
बिल्कुल
शुक्रिया। फिर
धन्यवाद, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे मौका दिया और मैंने अपने शब्द आपके सामने रखे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, धन्यवाद।